ओम शांति। आज 30 अक्टूबर 2023 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी तुम बहुत बड़े स्टीमर में बैठे हो। कहां बैठे हो? बैठे हो। तुम खारी चैनल को पार कर खीर सागर में जा रहे हो। खारी चैनल
पार।
खारी चैनल क्या होता है?
कलयुग से
नर्क। खारी चैनल नर्क और खीर सागर स्वर्ग। और दुनिया वालों ने समझा कि एक खीर सागर होता है, वहां लक्ष्मी नारायण विश्राम करते। नेपाल के अंदर एक मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर, वहां वो तालाब सा बनाया हुआ है, उसके बीच में लक्ष्मी नारायण जैसे चित्र में दिखाते हैं बैठे हैं, एक नारायण लेटे हुए हैं शेषनाग की शैया के ऊपर और उसे दूध से भरते। खीर सागर में लक्ष्मी नारायण शेषनाग की शैया में विश्राम करते हैं। कहां की बात कहां ले जाते हैं। खीर सागर माना खुशियों की दुनिया, स्वर्ग स्वर्णिम दुनिया। तुम्हारा लंगर उठ चुका है, ये क्या बात हो गई? लंगर किसे कहते हैं?
लंगर होता है नाव को बांध के समुद्र किनारे,
समुद्र के किनारे नाव को बांधते हैं जिससे, उसे लंगर कहते हैं। बांधने के लिए नहीं होता लंगर, जो है ना, जैसे बगाए हो, क्या बोलते हैं, का कुएं में बाल्टी गिर जाती है, उसको बाल्टी को निकालते थे ना पहले, उसको लंगर कहते हैं।
लंगर तो वही होता है, समुद्र किनारे पर उसको ठहराते हैं, नाव को ठहराते हैं, खूंटे गड़े हुए होते हैं किनारे किनारे,
उससे उस खूंटे को या उस मतलब क्या होता है, जैसे बच्चे आपने देखा होगा पतंग लूटने के लिए धागे के ऊपर पत्थर बांधते हैं और ऊपर फेंक, धागे पर पत्थर बांधते हैं, पतंग लूटते हैं, काटते हैं, देखा है आपने? नहीं देखा है कि नहीं देखा?
पत्थर धागे के लेके कैसे उड़ेगा?
उड़ेगा नहीं मेरे भाई, पतंग आप उड़ा रहे हैं, मुझे आपकी पतंग को काटना है। मैं अपने छत पे खड़ा होकर के लंगर फेंकूंगा आपकी डोर के ऊपर से, हाँ वो भी लंगर कहलाता है। लंगर बांधने वाली रस्सी को नहीं कहा जाता, एक्चुअल में ये जो छोटी नाव होती है उसको हम ऊपर से बांध देते हैं, उसको लंगर नहीं कहेंगे। बाकी वो कह दें तो मैं उसको मना,
समुद्रों के किनारे नाव से नदियों के किनारे खड़ी रहती है, लेकिन वो भी स्पोर्ट लेते हैं, उसको खड़ा करने
की स्पोर्ट लेते हैं, मतलब उसको बांधते हैं। परंतु वो लंगर जो है ना, एक बहुत बड़ा जहाज के हिसाब से, मतलब जितना बड़ा जहाज होगा उसका लंगर जो है वो उतना बड़ा होगा, भारी होगा, चैन वाला होगा, और वो किसी खूंटे से नहीं बांधा जाएगा क्योंकि वो किनारे तक नहीं आ सकता। तो उसके लिए उसको नीचे लटका दिया जाता है, तो वो नीचे चट्टान में कहीं ना कहीं फंस जाता है, और जैसे ही वो फंसता है उसको खींच लेते हैं, और जब खींचते हैं तो वो टाइट हो जाता है, तो जहाज जो है ना वहीं का वहीं रुक जाता है। बड़े बड़े जहाज को, स्टीमर को आप किनारे तक नहीं ला सकते, छोटी नाव तो किनारे तक आ जाएगी, परंतु जो बड़े जहाज होते हैं वो किनारों से दूर खड़े होते हैं, क्योंकि वो नीचे जितना ऊपर होते हैं उतना नीचे भी होते हैं, तो उनको बहुत दूर पहले से ही लटका दिया जाता है, तो वो नीचे जाकर के किसी न किसी कांटे बने, बाल्टी निकालने वाला, तो उसी प्रकार का होता है, और वो नीचे चट्टान में फंस जाता है, वो इतना मजबूत होता है कि जहां वो चट्टान में अटका उनको पता लगा कि अटक गया है तो उसको तुरंत खींचते हैं और वहीं पर उसको टाइट कर देते हैं और फिर वो वहां से अलग नहीं होगा, इतना टाइट कर देते हैं कि वो वहीं के वहीं खड़ा रहेगा। फिर वो जब चलाते हैं तो उस लंगर को ढीला करते हैं तो वो नीचे निकल जाता है और फिर थोड़ा सा जहाज चलाकर लंगर को उठा लेते हैं। इसे कहते हैं तुम्हारा लंगर उठ चुका। लाइन समझ में आई है? अब तुमने किनारा छोड़ दिया, अब तुमने किनारा क्या कर दिया है, छोड़ दिया, क्योंकि तुमने बाबा से अपना रिश्ता जोड़ा और बाबा की श्रीमत पर चलना शुरू किया। अब तुम्हारा इस नरक से रिश्ता क्या हो गया, खत्म हो गया, अब तुम स्वर्ग की तरफ जा रहे हो। ये बात समझ में आ गई? प्रश्न, बच्चों को विशेष थकावट किस बात में आती है? बच्चों को विशेष थकावट किस बात में आती है? थकावट आने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? उत्तर, बच्चे चलते चलते याद की यात्रा में ही थकते हैं। किसको याद है याद की यात्रा? आगे बढ़ना। किस में आगे बढ़ना? अपने में सुधार करना। बाबा की श्रीमत पर चलते चलते अपने में सुधार कर रहे हैं तो है याद की यात्रा, और यदि हमने सुधार करना रोक दिया तो फिर याद की यात्रा नहीं है, यात्रा नहीं है। तो ये थकावट कब आती है, कब इस यात्रा पर रुक जाते हैं? इसमें थकावट आने का मुख्य कारण है संग दोष। गलत संगत में बैठ गए फिर गलत बातें ही आएंगी। बाबा का संग छोड़ दिया, बाबा की श्रीमत पर चलना छोड़ दिया, अब उसका सुधरना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। हाँ जी, फोन दोष, फोन दोष भी बड़ा दोष है। संग है ना, आपने संग फोन का किया, खाली फोन का संग नहीं किया, फोन पर जितने लोगों ने आपके पास मैसेज भेजे हुए हैं, जितना आप YouTube, Instagram और Facebook, WhatsApp और दुनिया भर के टेलीग्राम साधन चल पड़े हैं, जितना आप उनमें जाएंगे तो उतने लोगों को आपने सुनना है ना, सुनना तो लोगों को है ना, तो उसे संग दोष में आ जाए। हाँ जी,
ये गलत संग दोष है। जिस सोसाइटी को आप चल रहे हैं या जिसमें बैठे हैं उसका असर आपको आ रहा है। आप बात कर रहे हैं किसी मोबाइल की,
नहीं
संग दोष हो गया
मोबाइल में, संग दोष हो गया ना भाई जी। आपके पास मान लो व्हाट्सएप देखते हो, आपके पास व्हाट्सएप पर आपके
मोबाइल कर रहे हो भाई, यदि आदमी साथ में चल रहा है तो उससे तो संपर्क हो जाता है, उसको बातचीत करना शुरू कर देता है। वो ये है संग दोष कि वो अटेंड उसको कर रहा है। मोबाइल को आप स्विच ऑफ कर कितने दिन रहे क्यों खोल रहे हो?
नहीं, वो देखिए जो कर ले तो वो तो सबसे अच्छी बात है ना। अब मोबाइल को आप कर दो, उन्होंने कहा कि मोबाइल भी एक संग दोष है, मतलब आप कहीं बाहर नहीं जा रहे हो, आप घर में बैठे हो, परंतु आपने मोबाइल को खोल दिया तो आपने अनेक लोगों का संग जोड़ लिया अपने साथ।
संग जोड़ना, मैसेज आ रहा है उसको पढ़ना, वो डिफरेंस है।
डिफरेंट है,
कोई अनिवार्य चीज है, आपने किसी को मैसेज देना है, वो भी एक अच्छी चीज है।
देखिए चाकू अच्छा है यदि वो डॉक्टर के हाथ में हो, चाकू अच्छा है माँ के हाथ में हो सब्जी काटने के लिए, चाकू यदि किसी गंदे व्यक्ति के हाथ में लग जाए तो वो चाकू मर्डर का काम करता है। इसलिए मोबाइल बुरा नहीं है, मोबाइल में भी आपने संग यदि शिव बाबा का किया है, मुरली पढ़ रहे हो, कोई अच्छे भाई बहनों की क्लास देख रहे हो, तो ये संग मैंने चुना ना। अब मैंने यदि संग उसमें चुन लिया और दूसरे लोगों का, तो संग हो गया ना। अच्छी बात है, बड़े से भी इतनी करेंगे जिसने बात करनी है, और जिसने बात नहीं करनी वो छोटे से भी लेके किसी गंदे दोस्त के साथ गंदी बातें बैठकर कर लेगा। मतलब बात सारी ये है कि चुनना तो मुझे है ना, कि मैंने किसके साथ क्यों बात करूं और क्या बात करूं, ये डिपेंड करता है मेरे ऊपर। संग दोष मेरे ऊपर है, किसी दूसरे के ऊपर दोष नहीं है। हाँ जी,
आप संग दोष को अटेंड कर रहे हैं ना, यदि आप उसको अटेंड नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल साफ।
हाँ, मतलब आपके पास कोई गलत व्यक्ति आ भी गया है, आप उसके साथ ज्ञान की चर्चा करते हैं, तो आपने गंदी संगत को भी अच्छी संगत बना दिया। वो उल्टी बात बोले, आप उसके साथ ज्ञान की चर्चा करो। वो आपके पास व्हाट्सएप गलत करे, आप उसको अच्छा व्हाट्सएप करो। आप अपना संग उसको दो, बाप का संग उसको दो, ये दोष मेरे ऊपर है, ये दोष दूसरे के ऊपर नहीं। मतलब मुझे सुधरना है, मैं बाबा की याद में हूँ, बाबा का संग मैं सबको बांटता जा रहा हूँ, तो संग दोष नहीं है। हमारे पास आएंगे तो गंदे ना, उनको ही ज्ञान देकर हमने अच्छा बनाना है ना। गंदे आएंगे, हमने उनको अच्छा बनाना है। तो ये संग दोष किसी दूसरे को, मोबाइल को दोष नहीं देना, हमने किसी व्यक्ति को दोष नहीं देना, दोष है तो मेरा, ये याद रखना है। जो बाप का हाथ छोड़ देते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं, तू ठीक बोल रहा है बाबा, तो नया बोला करे रोजाना, उसके पास तो और कुछ कहने के लिए है ही नहीं। हाँ, कहा जाता है संग तारे और कुसंग लोभ। संग में आकर, गलत संगत में आकर स्टीमर से पांव नीचे उतारा तो मगरमच्छ खा जाएगा। पांव तेरे को किसने कहा बाहर निकालने के लिए, फिर तो मगरमच्छ वहल मछली आएगी और निकल जाएगी सारा का सारा। वो ढूंढते रहेंगे यहीं बैठा था कहाँ गया, पता भी नहीं चलेगा। तो माया कच्चा खा लेगी, इसलिए बाबा बच्चों को सावधान करते हैं, बच्चे समर्थ बाप का हाथ नहीं छोड़ना, फिर तो ये मगरमच्छ के मुंह से भी निकाल लेगा। यदि हाथ छोड़ दिया फिर कौन निकालेगा, हाथ पकड़ना है तो आपने पकड़ना है, बाबा नहीं पकड़ेगा। जैसे माता पिता बच्चे को उंगली पकड़ा देते हैं, बच्चा उंगली पकड़ के चलता है ना, या माँ बाप बच्चे को पकड़ के चलते हैं,
बाप बच्चे को, माँ हो या बाप,
कौन पकड़ता है, माँ बाप पकड़ते हैं कि बच्चे पकड़ते हैं, माँ बाप पकड़ते हैं, क्योंकि उन्हें प्यार है, मोह है, आए मेरे बच्चा कहीं इधर उधर ना चला जाए। वो बच्चा तो कहता है मेरा हाथ छोड़ दो, मैं अपने आप चलूंगा, पर तू माँ बाप को चिंता, हाँ बिल्कुल, पकड़ के क्यों रखा है। मैं वही कह रहा हूँ कि बच्चे कहते हैं हाथ छोड़ दो हमारा, हम अपने आप चलेंगे, ठीक है नहीं, परंतु माँ बाप क्या करते हैं, नहीं उसको पकड़ के चलेंगे, परंतु हमारा बाप ऐसा है जो कहे ना मैं ना पकड़ू, पकड़ो तुम पकड़ो, नहीं पकड़ दे तो तुम पकड़ो। बाबा नहीं पकड़ता किसी का भी हाथ, ये हमारा बाप अलग है, इससे कोई डर नहीं है, परंतु माँ बाप को डर रहता है मेरा बच्चा कहीं सड़क पर ना चला जाए, कोई कुछ हो ना जाए, गिर ना पड़े, माँ बाप को डर रहता है। परंतु यहाँ बाप को डर नहीं, उसको पता है कि कोई गलत नहीं करेगा, जिसने पकड़ के चलना है वो पकड़ के चलेगा, जिसने नहीं पकड़ के चलना वो नहीं पकड़ के चलेगा। इसलिए बाबा क्या कर रहे हैं यहाँ पर, बाबा बच्चों को सावधान करते हैं, बच्चे समर्थ बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना, उस बाप का बेशक छोड़ देना। गीत, माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता, ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं बच्चे ओम शांति, इसको भी महामंत्र कहा जाता है। आत्मा अपने स्वधर्म का मंत्र जपती है, आत्मा अपने स्वधर्म का कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं ओम शांति कहती है। ये ओम शांति भी मंत्र है, सलाह है, क्या है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। अब उसको जपना है या याद रखना है, याद रखने का कोई यही तरीका होता है कि मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद बोलता हूं ओम शांति ओम शांति ओम शांति, अनुभव करना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। बोलने की जरूरत नहीं है, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, कापियों पर राम 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 लिखने की जरूरत नहीं है, अनुभव करो। मुझे शांति के लिए कोई जंगल आदि में जाने की दरकार नहीं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। ये मेरे ऑर्गन्स, आवाज करना ना करना ये मेरे हाथ में है ना, मैं बोलू मुंह से ना बोलू, मैं सुनू मैं ना सुनू, मेरे हाथ पर है ना। सुना अनसुना करना भी मेरे हाथ में है, देखा अनदेखा करना भी मेरे हाथ में है, परंतु ये ज्ञान ना होने कारण दर दर भटकते हैं। इस पर एक कहानी भी है, एक रानी का हार गले में था लेकिन वो भूल गई कि मैंने हार गले में डाला हुआ है, उसे लगा कि मेरा हार खो गया है तो वो बाहर ढूंढ रही थी। फिर कोई ने कहा हार तो गले में पड़ा है। ये दृष्टांत देते हैं, मनुष्य दर दर भटकते हैं ना। सन्यासी आदि भी कहते हैं मन की शांति कैसे हो, परंतु आत्मा में ही मन बुद्धि है, आत्मा में ही मन बुद्धि और संस्कार हैं। आत्मा इन ऑर्गन से ऑर्गन में आने से टाकी बनती है, जब तक शरीर में ना आए आत्मा टाकी मतलब बोलने वाली नहीं, बोल नहीं सकती बिना शरीर के। बाप कहते हैं तुम अपने आत्मा अपने स्वधर्म में रहो, इस देह के सब धर्म भूल जाओ, बार बार समझाते हैं तो भी कोई कोई कहते हैं हमको शांति में बिठाओ, निष्ठा कराओ, ध्यान में बिठाओ, ये भी कहना रॉन्ग है, ये भी कहना रॉन्ग है। एक आत्मा दूसरी आत्मा को कहती है कि मुझे शांत में बिठाओ, अरे क्या तुम्हारा स्वधर्म शांत नहीं है, तुम आप पे ही नहीं बैठ सकते हो, चलते फिरते तुम स्वधर्म में क्यों नहीं टिकते हो, करना क्या है सिर्फ एक संकल्प बस, वो भी सच्चा संकल्प कि मैं आत्मा हूं। बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ संकल्प करना है, खत्म बात, मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं शरीर हूं ही नहीं, मैंने इन आंखों को प्रयोग नहीं करना, इन कानों का प्रयोग नहीं करना, मुख का नहीं प्रयोग करना, ये मैं हूं ना प्रयोग करने वाले, छोड़ दो इसको कुछ समय के लिए। जितना समय के लिए आप इस शरीर में दर्द हो रहा है, कोई भी कुछ हो रहा है, आप उससे अलग हो जाओ, आप उससे अलग हो जाओ बस। चलते फिरते तुम स्वधर्म में क्यों नहीं टिकते हो, जब तक रास्ता बताने वाला बाप नहीं मिला तब तक स्वधर्म में टिक नहीं सकते। उन्होंने तो कह दिया है आत्मा सो परमात्मा, तो स्वधर्म में टिक नहीं सकते, फिर तो स्वधर्म में टिक नहीं सकते। इस दृष्टांत ऐसा इस अशांत देश में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। इस अशांत देश में तुम्हारा क्या है, ये अभी तुमको चलना है शांत देश में, फिर आना है सुख धाम में। यहाँ तो घर घर में अशांति है, सतयुग में घर घर में रोशनी है, तो यहाँ अंधियारा है। यहाँ हर बात में ठोकर खानी पड़ती है, घर घर में अंधियारा है, इसलिए दीप जलाते हैं, इसलिए दीप जलाते हैं। जब रावण मरता है फिर क्या आती है, दीपमाला आती है। रावण मरता है फिर दीपमाला मनाते हैं। रावण मरना माना अपने दुश्मनों को मारना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनको मारना, तो फिर क्या मनाएंगे, सच्ची सच्ची दिवाली, सच्ची सच्ची दिवाली थी नी। और उधर क्या आता है, होली जलाओ पहले, अपने असुरों को मारो, उनको जलाओ, और फिर रंगों की होली, प्रेम का रंग, सुख का रंग, शांति का रंग, पवित्रता का रंग लगाओ। ये दोनों त्योहार एक जैसे है ना, हाँ जी, बाबा सब कुछ ले आता है, बाबा का क्या पैसे लगते हैं, जब मर्जी आए मना दे। तो वहां तो रावण होता नहीं, मतलब दशहरा और होली जलाना, दिवाली मनाना और होली खेलना, बात एक ही है। तो सदैव दीपमाला ही है हमारे, क्या है सदैव दिवाली। यहाँ रावण राज्य के कारण 12 मास के बाद दीपमाला मनाते हैं। रावण मरा और लक्ष्मी नारायण का कारोनेशन हुआ। बाबा कहते होता तो कल्प में एक बार है, तो अब कल्प में एक बार है तो उसको बार बार मनाने के लिए हर साल मना देते हैं। लक्ष्मी नारायण का कारण दिवाली माना, लक्ष्मी नारायण का राजगद्दी पर बैठना, उनकी खुशी मनाते हैं। सतयुग में जब लक्ष्मी नारायण तख्त पर बैठते हैं तो कारोनेशन मनाते हैं। तुम जानते हो, क्या जानते हो, अभी रावण का राज्य है, अभी रावण का राज्य पूरा होगा, भारत को फिर से राज्य भाग्य मिलना है। अभी कोई राज्य नहीं, बाप से राज्य मिलता है, बेहद के बेहद का बाप बेहद की राजधानी का वर्षा देते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको सदा सुख का वर्षा देता हूं, बाकी सब क्या देते हैं, दुख का वर्षा देने वाले हैं, करके कोई सुख भी देंगे, मान लो कोई थोड़ा आपको सुख भी देंगे तो अल्पकाल क्षण भंगुर का, अल्पकाल क्षण भंगुर, वे सुख है काग विस्था समान। मैं तुमको इतना सुख देता हूं जो फिर कभी दुख होगा, जो फिर कभी दुख होगा, होगा ही नहीं। इसलिए इस देह सहित देह के संबंध रखने वालों को भूलो, ये देह और देह के संबंधी तुमको दुख देने वाले हैं, तुमको दुख देने वाले हैं, इनको छोड़ मुझ एक को याद करो, इनको छोड़ मुझ एक को याद करो। याद करना होता है सवेरे अमृत वेले, भक्ति मार्ग में भी मनुष्य सवेरे उठते हैं, कोई इसकी मत पर क्या करते, कोई क्या करते, बाप समझाते हैं, सवेरे उठकर जितना हो सके अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। ये है बाप का फरमान। एक है ये है बाप का फरमान। भक्त भगवान को याद भी करते हैं और फिर कह देते सब भगवान है। अभी वे समझते हैं नहीं, एक दिन वे सब तुम्हारे मित्र बनेंगे, एक दिन वो सब तुम्हारे मित्र बनेंगे। ये बात तो ठीक है। ईश्वर सर्वव्यापी कहना गोया अपना और भारत का बेड़ा गर्क करना। दूसरी बात, भारत को स्वराज्य का मक्खन दिलाने वाला है बाप। उनके बदले फिर नाम रख दिया है बच्चे का। जिस श्री कृष्ण को मक्खन मिलता है तो मनुष्य समझते हैं भारत को मक्खन दिलाने वाला श्री कृष्ण है। बाप के नाम के बदले बच्चे का नाम डाल अनर्थ कर दिया है। अब सारी दुनिया का भगवान कोई श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता। सारी दुनिया का भगवान श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता। मनुष्यों ने रावण की मत पर अपने आप को श्रापित किया है। बाप है खिवैया, तुम सब हो नैया। वो है खिवैया, तुम सब हो नैया। गाते हैं ना, नैया मेरी पार करो। अभी तुम बैठे हो बड़े स्टीमर में, चंद्रकांत वेदांत में स्टीमर की बात है, वे भी अभी का बनाया हुआ है। तुम स्टीमर में उस पार जा रहे हो, विशेष सागर से अमृत अथवा खीर सागर में आते जाते हो, जैसे लंदन से खारी चैनल से भी स्टीमर पार करते हैं, उनको इनाम मिलता है। उनको क्या मिलता है? इनाम मिलता है। ये फिर नरक से स्वर्ग जाना है, विशेष सागर खारी है। तुम बड़े स्टीमर में बैठे हो, तुम चल पड़े हो, लंगर उठ गया है, तुम जा रहे हो, उस पार जाना है। स्टीमर चलते चलते पोर्ट आते हैं, वहां पर कोई उतरते हैं, कोई चढ़ते हैं, कोई खान पान के पीछे जाते हैं तो रह जाते हैं। इस पर एक कहानी बनाई हुई है, कृष्ण को बटुक महाराज लिख दिया है। कृष्ण को लिख कहते हैं बटुक महाराज। वे स्टीमर का कैप्टन है। फिर स्टीमर से चलते चलते कोई उतर जाते हैं तो वहां माया अजगर बैठी है, महारथियों को भी हप कर खा जाती है। पढ़ाई को छोड़ देते हैं, गोया निश्चय बुद्धि ना रहे, फिर बीच सागर में गिर पड़ते। तुमने देखा है पंछी मरते हैं तो फिर चींटियों का झुंड आकर उनको उठाते हैं, पंछी को उठाते हैं, खा जाते हैं। तो ये पांच विकारों रूपी भूत एकदम कच्चा खाकर हप कर लेते हैं। इस पर बड़ी कहानी लिखी हुई है। समझो कोई स्टीमर में बैठे, गारंटी भी लिखते हैं, फोटो भी अपना भेज देते हैं, फिर अगर किसके संग में बिगड़ गए तो पढ़ाई छोड़ देंगे। फिर वे चित्र उनको वापस भेज देंगे। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी वाला चित्र भी सबको भेजेंगे, हम ये बन गए। फिर छोड़ देंगे तो उनका चित्र भी उनको वापस भेज देते, ले जाओ भाई। इस समय माया है तमो प्रधान, ईश्वर का हाथ छोड़ा तो असुर पकड़ लेंगे। ऐसे बहुत चलते चलते हाथ छोड़ उतर जाते हैं। समाचार आते हैं इनको क्रोध के भूत ने, इनको मोह के भूत ने पकड़ लिया है। पहले तो नष्टो मोहा बनना पड़े, मोह एक से रखना चाहिए। ये है मेहनत। ये है मेहनत। मोह की जंजीरें बहुत लगी हुई हैं, अब एक से बुद्धि योग लगाना है। जैसे मनुष्य भक्ति बैठ करते हैं तो बुद्धि धंधे तरफ घर तरफ चली जाती है। यहाँ भी तुम्हारा ऐसा होगा, चलते चलते तुमको बच्चा याद आ गया, आ जाएगा। बस पति याद आ जाएगा, हो गया खेल खत्म। बाप कहते इन जंजीरों से बुद्धि योग हटाकर एक को याद करो, अगर अंत समय और कोई स्मृति आई तो अंत काल जो पति सिमरे। आज चेंज कर दिया है भाई, पहले था अंतकाल जो स्त्री सिमरे, आज बाबा ने कहा है अंतकाल जो पति सिमरे। बात एक ही है, विकार में गए तो नरक में जाएंगे ही जाएंगे, चाहे स्त्री सिमरो तो चाहे पति सिमरो। हाँ, पिछाड़ी में सिवाय शिव बाबा के और कोई याद ना आए, ऐसा अभ्यास डालना है। सवेरे उठ बाप को याद करो, बाबा हम आपके पास आए हैं, जरूर हम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। बाप और वर्षे को अर्थात अलफ और बे को याद करना है। अलफ अल्लाह, बे बादशाही। आत्मा बिंदी है, जहाँ मनुष्य टीका लगाते हैं तो कोई बिंदी लगाते हैं, कोई लंबा तिलक लगाते हैं, कोई क्राउन माफिक बनाते हैं, कोई छोटा स्टार बना देते हैं, कोई हीरा लगाते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्मा हो, जानते हो आत्मा स्टार मिसल है, उस आत्मा में सारे ड्रामा का अविनाशी पार्ट रिकॉर्ड भरा हुआ है। अब बाप फरमान करते हैं निरंतर मुझ एक बाप को याद करो और सबसे बुद्धि योग तोड़ो। ये लक्ष्य और कोई भी दे ना सके। बाप कहते हैं तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पाप हैं, वो याद के सिवाय, वो याद के सिवाय भस्म नहीं होंगे। एवर हेल्दी बनने लिए पाप को याद करना है। एवर हेल्दी बनना है तो क्या करना है? बाप को याद करना है। बाप से ही वर्षा मिलता है। एवर हेल्दी और एवर वेल्दी पने का हेल्थ वेल्थ है, हेल्थ वेल्थ है तो बाकी क्या चाहिए मुझे बताओ। कहते और क्या चाहिए? हेल्थ है वेल्थ नहीं तो मजा नहीं, वेल्थ है तो हेल्थ नहीं तो भी मजा नहीं। आत्मा को पहले बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे और 21 जन्मों के लिए हेल्थ मिलेगी। सदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो फिर 21 जन्मों के लिए वेल्थ मिलेगी। जितना अपने बुराइयों का गला काटेंगे उतना आपको वहां पर खजाने मिलेंगे। कितनी सहज बात है, हमने 84 जन्म ऐसे चक्र लगाया है, अभी सब खाक हो जाने वाला है, अभी सब खाक हो जाने वाला है, उनसे दिल क्यों लगाएं? दिल उनसे लगानी है जो नई दुनिया की बादशाही दे, स्वर्ग का मालिक बनाए, नरक का क्यों? आत्माओं से बात करते हैं, बच्चे आप इस शरीर को भूल, इस शरीर को भूल, अपने को अशरीरी आत्मा समझ, मुझे याद करो। ये शरीर तुमको पार्ट बजाने के लिए मिला है। सवेरे उठकर ये सिमरन करना चाहिए। साजन जो खाड़ी से पार ले जाते हैं उनको याद करना है, बाकी और सब विशेष सागर में डूबने वाले हैं। बाप है पार करने वाला, उनको खिवैया बागवान भी कहते कहा जाता है। तुमको कांटे से फूल बनाकर स्वर्ग में भेज देते हैं, फिर स्वर्ग में तुम कभी दुख नहीं देखेंगे, फिर तुम स्वर्ग में कभी दुख नहीं देखेंगे। इसलिए उनको कहते हैं सुख हरता सुख करता, हर हर महादेव कहते हैं ना, शिव को ही कहेंगे। ये है ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप, शिव जो है वो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप। वही बाप 21 जन्म के लिए सुख का वर्षा देते हैं, तो किसको याद करना चाहिए, किसको याद करना चाहिए? हिम्मत याद करते करते थक जाते हैं, तो थक जाते हैं तो चलना ही बंद कर देते हैं। संग ऐसा मिल जाता है जो छोड़ देते हैं, इसलिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। जहां बाहर जाने से कुसंग मिलेगा तो नशा उड़ जाएगा, गंदी संगत में चले गए नशा उड़ जाएगा। कोई कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों के पास जादू है लग जाएगा, उनके पास नहीं जाना, परीक्षाएं तो आएंगी। ऐसे बहुत होते हैं 10 वर्ष ज्ञान में चलकर फिर संग दोष में आ जाते हैं। पांव नीचे उतारा, कहां से पांव नीचे उतारा? स्टीमर से, जहां बैठे हैं। माया कच्चा खा लेती है, ये भी निश्चय करते हैं कि बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलता है, फिर भी माया के बड़े तूफान आते हैं। ये युद्ध का मैदान है, आधा कल्प माया का राज्य चला है, अब उन पर विजय पानी है। रावण को जलाते हैं, फिर एक दिन खुशी मनाते हैं। ये सब आर्टिफिशियल सुख है, रियल सुख मिलता है सुख धाम में, बाकी नरक का सुख है दाग विष्ठा के समान। स्वर्ग में तो सुख ही सुख है। तुम सुख धाम के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, बॉक्सिंग में कभी माया की जीत कभी बच्चों की जीत होती है। ये युद्ध रात दिन चलती है, उस्ताद का हाथ पूरा पकड़ना है, उस्ताद का हाथ पूरा पकड़ना है। उस्ताद सर्वशक्तिमान समर्थ है, हाथ छोड़ देंगे तो फिर सर्वशक्तिमान भी क्या करेगा, सर्वशक्तिमान बाप भी क्या करे? हाथ छोड़ा ये क्या
मर गया।
स्टीमर की बात शास्त्रों में भी है, अब स्टीमर जा रहा है, बाकी थोड़े दिन है, वैकुंठ तो सामने देखने में आता है, पिछाड़ी के टाइम तो घड़ी घड़ी वैकुंठ के दृश्य देखते रहेंगे, वैकुंठ के दृश्य देखते रहेंगे। जैसे शुरुआत में बहुत देखते थे, शुरुआत में बहुत देखते थे, पिछाड़ी में भी तुमको बहुत साक्षात्कार होगा। जो यहाँ होंगे, जो हिम्मत से हाथ पकड़ कर रखते हैं, वही अंत समय ये सब देखेंगे। बच्चियां बतलाने लग पड़ेंगी, बच्चियां बतलाने लग पड़ेंगी, बाबा ये दासी बनने वाली है, ये फलानी बनने वाली है। फिर अफसोस करेंगे, हम दासी बन गए, हम दासी बन गए, मेहनत नहीं की तो और क्या हाल हुआ। फिर बहुत पछताना होगा। शुरुआत में तुमने बहुत खेल पाल देखे, गीत है ना, हमने देखा हमने पाया, शिव बोला भगवान है। तो जैसे समय नजदीक आता जाएगा सब बतलाते रहेंगे, फिर पढ़ाई तो हो ना सके। बाप कहेंगे तुमको कितना समझाया, तुम श्री मत पर नहीं चले तो ये तुम्हारा हाल हुआ। अब कल्प कल्प इसी प्रकार आप श्री मत पर नहीं चलेंगे और यही हाल होगा। अब सिवाय रोने के तुम्हारे पास कोई चारा और कोई चारा नहीं। तो इसलिए बाबा कहते अपना पुरुषार्थ करते रहो, मात पिता को फॉलो करो। कई कपूत बच्चे भी होते हैं ना, माया के वश हो तंग करते हैं, फिर बहुत भारी सजा खाएंगे। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, सजाओं का भी बच्चियों ने साक्षात्कार किया है। दुनिया में है आसुरी संग और यहाँ है ईश्वरीय संग। बाबा सब बातें समझाते हैं, फिर ऐसे कोई ना कहे कि हमको क्या पता। विनाश के समय मनुष्य बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे, तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। मिरवा मौत मलो का शिकार, इसी प्रकार से तुम डांस करते रहेंगे, तुम देखते रहेंगे कि विनाश के बाद फिर हमारे महल कैसे बनते हैं। जो जीते रहेंगे वे सब देखेंगे। बाप का बनकर फिर अगर फारकती दे दी, छोड़ दिया, तलाक दिया तो देख थोड़े ही सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हुए बच्चों प्रति नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, समर्थ बाप का हाथ पकड़कर रहना है, एक बाप से ही दिल लगानी है, सवेरे सवेरे उठकर याद में रह बैठना है, संग दोष से अपनी संभाल करनी है, कुसंग में आकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़ दी है। आज का वरदान खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले नॉलेजफुल भाव। और क्या करना है हमें, खुशी की गोली व इंजेक्शन स्वयं अपने आप को लगाना है, देना है। ब्राह्मण बच्चे अपने बीमारी की दवाई स्वयं ही कर सकते हैं। खुशी की खुराक सेकंड में असर करने वाली दवाई है। जैसे डॉक्टर्स पावरफुल इंजेक्शन लगा देते हैं तो चेंज हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण स्वयं ही स्वयं को खुशी की गोली दे देते व खुशी का इंजेक्शन लगा देते तो बीमारी का रूप बदल जाता है। नॉलेज की लाइट माइट शरीर को भी चलाने में बहुत मदद देती है। कोई भी बीमारी आती है तो ये भी बुद्धि को रेस्ट देने का साधन है, ये भी बुद्धि को रेस्ट देने का साधन है। स्लोगन, जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त कर लेते वही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। मन की एकाग्रता, एक विषय पर चिंतन करने से उसमें सफलता सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं और उसी को सिद्धि स्वरूप कहा जाता है। जो सफलता प्राप्त करेगा वही विजयी बनेगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।